जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
निताय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 16वां अध्याय। मुनियों द्वारा वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को शाप। श्लोक संख्या 30 और 31। 30वां श्लोक मैं अकेले पढ़ूंगा, फिर 31वां श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। प्रारंभ करने के पहले सबसे नम्र निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल फोन कृपया आप बंद कर लीजिए। अभी जांच कर लीजिए बंद है या नहीं है। एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा परा विरता द्वारी विशन्ति मयुपारते। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थीं क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक दिया जबकि मैं सो रहा था। ये भगवान बोल रहे हैं द्वारपाल जय और विजय से। अब 31वां श्लोक। मई संरम्भ योगेन निस्थीर्य ब्रह्महेलनम् तत्येशतम् निकाशम् कालेन अल्पीयसा पुनः। मयि संरभ्य योगेन मयि संरभ्य योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् शतम निकाशम में काले नाल्पीयसा पुनः मयि संरम्भ्य योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् प्रत्येषतम् निकाशम् मे कालेनाल्पीयसा पुनः मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् प्रत्येषतम् निकाशम् मे कालेनाल्पीयसा पुनः संरम्भ योगेन क्रोध में योग के अभ्यास द्वारा निस्तीर्य से मुक्त किया गया ब्रह्महेलनम ब्राह्मणों की अवज्ञा का फल प्रत्येषतम वापस आएंगे निकाशम निकट में मेरे काल क्रम में क्षमा कीजिए काले न काल क्रम में अल्पीयसा अत्यंत अल्प पुनः फिर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। तात्पर्य, भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा निवारित हो सकता है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। इस बारह रस बारह हैं, पांच प्रमुख तथा सात गौण। पांच प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु सात गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के ही अंतर्गत गिने जाते हैं यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई किसी तरह से भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है, जैसा कि श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णन हुआ है, कामम क्रोधम भयम। गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट थीं। इसी तरह है कंस अपनी मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इस तरह है भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अति शीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया है, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत विपन्ययः। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं जबकि अभक्त गण असुर कहलाते हैं, किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है भगवान के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवद गीता में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तः, सदैव मेरा चिंतन करो। चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। भौतिक लोकों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण या वैश्य का अनादर करना सबसे अधिक पाप पूर्ण है। यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह है, जो अभक्त गण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं वे भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च प्रकार का चिंतन है। इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा किया जाता है। भागवत के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है तो यह है विशेष योग्यता, विष्णु या कृष्ण का चिंतन उसके सारे पापों को धो डालता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतमय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
सब यहाँ कृपया आगे आइएगा ताकि पीछे थोड़ी जगह हो जाए यहाँ खाली जगह पड़ी है तो आप सब सामने आइएगा इस तरफ से ताकि पीछे जो भक्त खड़े हैं वो अंदर आके बैठ सके जय और विजय शीघ्र ही असुर योनि में प्रवेश करने वाले हैं। चार कुमारों ने उनको श्राप दिया था और भगवान अभी कह चुके हैं चार कुमारों से कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है क्योंकि ये सब मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, ये मेरी योजना है। प्रभुपाद जी समझा चुके हैं तात्पर्यों में कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं इस भौतिक सृष्टि में कभी कभी, हर समय नहीं, कभी कभी अपने किसी पार्षद को भेज देते हैं। वो पार्षद एक असुर की भूमिका निभाते हैं और भगवान के साथ युद्ध करके भगवान को वीर रस का आस्वादन कराते हैं। तो भगवान की ये सारी योजना थी, अन्यथा ये संभव नहीं था कि चार कुमार जैसे आत्मसंयमी ऋषि ऐसे क्रुद्ध होकर शाप दे दें, और वो भी वैकुंठ वासियों को। और नहीं ऐसे संभव था कि जय विजय जैसे वैकुंठवासी जो भगवान के निजी सेवक थे, जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, वो चतुष्कुमारों को इस प्रकार से रोक दें या लक्ष्मी जी को भी रोकें, जैसे कि अब भगवान कह चुके हैं। ये सब भगवान की योजना से हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि आप जाइए। वैसे तो लक्ष्मी देवी को आपने रोका था पहले, इसलिए उन्होंने तो ऐसे घोषणा कर ही दी थी कि आपको वहां जाना होगा, तो आप जाइए। असुर योनि में भले आपका जन्म हो जाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शीघ्र ही आप पुनः यहां वैकुंठ लोक में आ जाओगे। तो भगवान ऐसे उनको आश्वासन देते हैं और वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, संरम्भ योगेन। भक्ति करना परंतु क्रोध से, तुम ऐसे संरम्भ योग के द्वारा पुनः मुझे प्राप्त कर पाओगे और मेरे धाम में लौट आओगे। तो क्रोध के द्वारा भक्ति करना, ये एक विरोधाभास लगता है। वैसे भक्ति तो एक प्रेम का पथ है, तो फिर क्रोध और भक्ति ये दो शब्द एक साथ कैसे जुड़े जा सकते हैं? एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं जुड़े जा सकते, क्योंकि जब श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तमा भक्ति की परिभाषा देते हैं, तो वो कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वो कहते हैं कि उत्तम भक्ति वो है जिसमें कर्म ज्ञान आदि का कोई आवरण नहीं है, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है भगवान की सेवा के बिना, और ये सेवा अनुकूल भाव से किया जाना चाहिए। कृष्ण के प्रति या कृष्ण से संबंधित जो चीजें हैं उनके प्रति, तब जाकर ये उत्तमा भक्ति कहलाती है। तो क्रोध ये तो एक अनुकूल भाव नहीं कहलाता है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्तमा भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो ये क्रोध से भगवान का स्मरण करना ये भक्ति नहीं कहलाता है। फिर भी क्योंकि भगवान आध्यात्मिक स्तर में सदैव स्थित होते हैं, वो द्वंद्वों से मुक्त होते हैं, इसलिए ये न कि इन प्रकार न किसी भी प्रकार से यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, भले वो क्रोध से हो, द्वेष से हो, काम से हो या प्रेम से हो, हर तरह से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हम शुद्ध हो जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर संवाद है नारद मुनि और महाराज युधिष्ठिर के बीच में। आपको तो पता है कि राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया था श्री कृष्ण के प्रति, कई अपशब्द कहे, अंततः श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन काट दी अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, और ऐसे शिशुपाल का उद्धार कर दिया। अब सबके सामने शिशुपाल के मृत शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकली और श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई, ये सभी ने देखा। वहां महाराज युधिष्ठिर भी उपस्थित थे, उन्होंने भी देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस सारे घटना के बाद फिर वो नारद मुनि से प्रश्न कर रहे थे कि हमें कैसे समझ सकते हैं कि ये घटना हुई, ये तो कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और हमने सुना, नहीं, हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा और अनेकों ने देखा कि शिशुपाल जैसा द्वेषी व्यक्ति, ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो भगवान से घृणा करता था, ईर्ष्या करता था, ऐसे व्यक्ति को सायुज मुक्ति प्राप्त हो गई। वो सायुज मुक्ति जो कि बड़े बड़े योगियों को, मुनियों को, भक्तों को भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसी मुक्ति सहज ही निंदा करने से, ईर्ष्या करने से शिशुपाल को प्राप्त हो गई, एक मैं कैसे समझ सकता हूं। वैसे शिशुपाल तो बचपन से ही, जब से उसने बोलना शुरू किया तब से वो श्री कृष्ण के प्रति अपशब्द कहा करता था, अपने भाई दंतवक्र के साथ में बहुत घृणा थी उन दोनों के मन में कृष्ण के प्रति। तो फिर ये कैसे हो पाया? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शिशुपाल न तो ज्ञानी था, न भक्त था, न योगी था। जो भक्त होते हैं वो तो भगवान में लीन होने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं रखते, वो तो भगवान की सेवा निरंतर करना चाहते हैं, और फिर भगवान उनको अपने वैकुंठ जगत में, अपने सानिध्य में एक स्थान देते हैं जहां उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान चलता रहे निरंतर। जो योगी हैं और ज्ञानी हैं वो भी भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान के पथ को स्वीकार करके निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। परंतु शिशुपाल योगी ज्ञानी नहीं था और न ही वो भक्त था, तो उसे ऐसी मुक्ति कैसे प्राप्त हुई, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे भी अनेक राजा हुए, जैसे महाराज वेन, महाराज वेन ने भी बहुत निंदा की भगवान की, परंतु उसे नरक की गति मिल गई। यहां शिशुपाल को फिर कैसे मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो गई? तो कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें हे मुनिवर। ऐसे महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से प्रश्न कर रहे थे। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया कि देखो, ये जो स्तुति और निंदा है या सत्कार या न्यकार है, ये जो द्वंद्व है, ये उनके लिए है जो अज्ञान में है। दूसरे शब्दों में, जिनको एक भौतिक देह प्राप्त हुआ है और जो देहात्म और जिनकी देहात्म बुद्धि है, जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, वो इन द्वंद्वों के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए जब उनकी कोई स्तुति करता है तो उनको बड़ा सुख महसूस होता है, जब उनकी कोई निंदा करता है उनको बड़ा दुख होता है। जी, यहां द्वंद्वों में फंसे रहने वाले जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए ये सत्कार और न्यकार, स्तुति या निंदा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। परंतु भगवान का कोई भौतिक देह नहीं है, भगवान का तो दिव्य चिन्मय शरीर है, और इसलिए भगवान ऐसे बंधुओं से कोई संबंध नहीं रखते हैं, चाहे कोई उनकी स्तुति करे या उनकी निंदा करे। जब कोई भगवान की स्तुति करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने मेरी स्तुति की, हाँ वास्तव में मैं इस स्तुति के योग्य हूं, मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं। नहीं, भगवान ऐसे सुख का अनुभव नहीं करते हैं, भगवान निराशक्त होते हैं। उसी तरह कोई यदि भगवान की निंदा भी करते हैं तो भगवान अप्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान दुखी नहीं हो जाते, उदास नहीं हो जाते कि इस व्यक्ति ने मेरी निंदा क्यों की, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं। तो इसलिए भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। मूल संदर्भ ये था कि नारद मुनि जानना चाहते थे कि वैसे भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। ये परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न था और सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर देते समय इस संवाद को सुनाया महाराज परीक्षित को। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि क्षमा कीजिए, नारद मुनि कहने लगे कि क्योंकि भगवान बंधुओं से परे हैं इसलिए ऐसे स्तुति निंदा आदि उनके ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति भले वो उनकी स्तुति करे उनकी निंदा करे, भले वो ऐसे अपने मन को तीव्रता से केंद्रित कर दे घृणा में भय में, क्योंकि भगवान परम सत्य है द्वंद्वों से परे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल भाव से भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित कर दे तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए भगवान के प्रति किसी भी भावना से मन केंद्रित करने से व्यक्ति का लाभ होता है, भले वो शुद्ध भक्ति न हो परंतु वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा और भगवान की धाम को प्राप्त कर लेगा। हाँ, साधारणतः जो भगवान के शत्रु होते हैं भगवान उनका वध करके उनका उद्धार करते हैं और उनको निराकार ब्रह्म में एक स्थान दे देते हैं, मुक्ति तो हो जाती है उनकी, और जो उनके भक्त हैं उनको तो वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, अंतर इतना ही है, परंतु दोनों को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो नारद मुनि कहते हैं तस्माद् वैराणु बंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन् निक्षते पृथक्। वो कहते हैं कि कथञ्चिन् येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से यदि हमने हमारा मन, किसी व्यक्ति ने उसका मन भगवान के ऊपर केंद्रित कर दिया तो फिर क्या होता है कि पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाता है। कैसे? तस्मात् वैर अनुबंधेन, मतलब बहुत तीव्र वैर भावना से, शत्रुता की भावना से, या निर्वैरेण अर्थात भक्ति करने से, निर्वैरेण मतलब शत्रुता से मुक्त होके अर्थात एक अनुकूल भाव से, भयेन वा या किसी ने भय के कारण भी अपना मन भगवान के ऊपर केंद्रित कर दिया, स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात्, स्नेह से या काम के द्वारा भी किसी ने अपने मन को पूरी तरह से भगवान के ऊपर केंद्रित किया तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। वैसे तो हम सुनते आए हैं कि हमें भगवान के प्रति प्रेम भावना से अनुकूल भावना से सेवा करनी चाहिए, परंतु यहाँ नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भय से क्रोध से ईर्ष्या से वैर से भी भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित करे तो उसका उद्धार हो सकता है, वो शुद्ध हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान की सेवा वैर भावना से करनी चाहिए, क्रोध करके द्वेष करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नारद मुनि ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि भगवान के शत्रु या जो लोग अपने आप को भगवान का शत्रु मानते हैं भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, भगवान तो किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन जो लोग भगवान को शत्रु मानते हैं, कहीं हम ऐसा नहीं समझें कि ये लोग भगवान के भक्तों से श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। परंतु नारद मुनि इस बात को बताना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमें भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित करना चाहिए, और भगवान क्योंकि भगवान है तो ऐसे मन केंद्रित करने से हमारा उद्धार निश्चित है। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शिशुपाल दंतवक्र आदि ऐसे जो विशेष उदाहरण बतलाए गए हैं शास्त्रों में, उनके अलावा यदि कोई ऐसे वैर भाव रखता है और ऐसे वैर भाव से वो भगवान की निंदा करता है, तो उसकी गति भगवान का धाम नहीं होगा, उसकी गति नरक होगी। जैसा कि भगवत गीता के 16वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, जो सदैव भगवान की निंदा करते रहते हैं, उनको कैसे गति प्राप्त होती है। आसुरम योनिम आपन्न मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। जो ऐसे जन्मनि जन्मनि बार बार जन्म जन्म से ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं, उनको असुर योनि में जाना पड़ता है और असुर योनि के बाद भी उनको बारंबार और भी निम्न श्रेणी की योनियों में प्रवेश करना पड़ता है। हो सकता है पशु योनि में, कीड़े योनि में। तो जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, कभी भी उसे भगवान के प्रति वैर भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान की निंदा इस वैर भावना से नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये उचित नहीं है कि वो किसी अपने शत्रु को या किसी शेर को या किसी सांप को आलिंगन करके मृत्यु को निमंत्रण दे, ठीक उसी प्रकार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की निंदा करके नरक लोक में जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे तीव्रता से अपना मन केंद्रित करे शत्रु भावना में, फिर भी उद्धार हो सकता है, तो इसे कैमुत्य न्याय कहते हैं। कैमुत्य न्याय का मतलब है, जब हम बताना चाहते हैं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी इतना लाभ होगा तो भले व्यक्ति को कितना लाभ होगा, हम ये तुलनात्मक दृष्टि से बताना चाहते हैं। तो नारद मुनि के कहने का उद्देश्य ये है कि यदि वैर भावना से भी अपना मन केंद्रित करने वाले व्यक्ति की ये गति होगी, उसे भी सायुजी मुक्ति प्राप्त होगी, तो फिर भगवान के भक्त की गति क्या होगी, भगवान का भक्त को और कितना भला होगा, ये कहना चाहते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि वैर भाव या क्रोध द्वेष आदि को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो बताना चाहते हैं कि भगवान इतने शुद्ध हैं, भगवान इतने महान हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके मन पे किसी भी भावना से क्यों ना हो अपना मन केंद्रित करे, वो शुद्ध हो जाएगा। वैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि जो गोपियों की लीला है भगवान श्री कृष्ण के प्रति के साथ में, वो कोई साधारण पुरुष और स्त्रियों की लीला नहीं है, क्योंकि गोपियों ने जो एक प्रेम का भाव रखा था उनके प्रति, वो बड़ा शुद्ध था। और उस समय भी सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही बात कहते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सहुर्दम एवच नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन मयताम हिते। वो कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे गलत भावनाओं से, जैसे काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, एकत्व की भावना से, या कोई अनुकूल भावना हो जैसे सुहृद भाव हो, ऐसे कोई भाव रखे नित्य हर उदो, तो नित्य रूप से ऐसी भावना बड़ी तीव्रता से बनाए रखें और ऐसे अपना मन केंद्रित करने का प्रयास करे, तो वो तन्मय हो जाता है भगवान में। तो चाहे हमारी भावनाएं अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परंतु तीव्रता से इन भावना को हम रखें तो हम तन्मय हो जाते हैं भगवान में। तो ऐसे तन्मयता के कारण हम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तन्मयता वो भगवान से संबंधित है, किसी संसार के वस्तु से नहीं। तो ऐसे तन्मयता हमारे हृदय का शुद्धिकरण का कारण बन जाता है। तो शिशुपाल, कंस आदि कृष्ण में तल्लीन थे, तन्मय थे, ये कारण है उनके उद्धार का। इतनी तन्मयता नारद जी कहते हैं कि यथा वैराणु बंधेन मर्त्यस्तन्मयताम इयात न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चित मति है। वो कहते हैं कि जितनी तन्मयता वैर भावना से उत्पन्न हो सकती है वो भक्ति करने से भी नहीं उत्पन्न हो सकती। ये मेरा मत है हे महाराज युधिष्ठिर। एक बहुत विचित्र बात कह रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं कि जब किसी के हृदय में वैर होता है किसी के प्रति, तो जो एक तन्मयता, जो एक तीव्रता, भावना की जो तीव्रता होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो प्रेम से भी ज्यादा होती है। श्री प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं अपने तात्पर्य में, और वो कहते हैं कि नारद मुनि ऐसा कह रहे हैं नम्रता के कारण। नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी तो पूरी तरह से तन्मय है भगवान में, उनका चित्त तो तल्लीन पूरी तरह से है भगवान में, फिर भी वो जब देखते हैं शिशुपाल को, कंस को, दंत वक्र को, सोचते हैं क्या अद्भुत बात है, देखो कितना तन्मय है इनका चित्त, कितनी तन्मयता से भगवान में इन्होंने अपने चित्त को मग्न कर दिया है, ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता मुझ में नहीं है। नारद मुनि नम्रता पूर्वक ऐसा सोच रहे हैं कि जितनी तन्मयता कंस और शिशुपाल में थी वो मुझ में नहीं है, मैं भक्त ही नहीं हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी तन्मयता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई भक्त, कोई साधारण भक्त भी श्रीमती राधा रानी के पास जाए, जैसे हम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के पास में सामने खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें कि श्रीमती राधा रानी हम श्री कृष्ण की इस तरह से सेवा करना चाहते हैं तो कृपया आप सेवा में मदद कीजिए या कृपा कीजिए, तो श्रीमती राधा रानी ऐसी सोचती है कि ये भक्त कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छे भक्त हैं ये, तो श्रीमती राधा रानी से तो श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं हो सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमती राधा रानी भी नम्रता पूर्वक अपने आप को निम्न श्रेणी की समझती हैं, सोचते हैं कि ये भक्त कितने अच्छे हैं। वास्तव में जो प्रेम से तल्लीनता या तन्मयता उत्पन्न हो सकता है वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रभुपाद जी कहते हैं। नारद मुनि इस समय नम्रता से ऐसा कह रहे हैं ये बताने के लिए कि देखो शिशुपाल और कंस के मन में भी ऐसी तीव्र भावना थी तो ब्रजवासियों के मन में कितनी हुई होगी, विशेष करके जो राग मार्ग में स्वाभाविक आकर्षण या प्रेम के मार्ग में वृंदावन में जो भक्त रहे उनकी तन्मयता क्या हुई होगी हम कल्पना कर सकते हैं। गोपियां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करती थी बहुत तीव्रता से। जब श्री कृष्ण वन में चले जाते थे गायों को चराने के लिए तो गोपियों के मन में चिंता होती थी कि अरे श्री कृष्ण के कोई जूते चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर चले जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वहां तो कांटे होते हैं तरह तरह के कांटे, और ये कांटे चुभेंगे श्री कृष्ण के चरणों को, तो ये विचार करने से ही गोपियों को बहुत कष्ट होता था। तो ऐसे भावना से, ऐसे तीव्र भावना से गोपियां हमेशा मग्न रहती थी। आपको तो पता है कि श्री कृष्ण चप्पल जूते पहनने के लिए तैयार नहीं हुए थे, माता यशोदा ने बहुत कहा था बेटा पहनो चप्पल पहनो, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, पैर को तुम्हारे पैरों को चुभेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने एक नहीं मानी, क्यों कहा पहले गायों को पहना दो फिर मैं पहनूंगा। अब माता यशोदा ने सोचा कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतने गाय हैं, 9 लाख गाय हैं और सबके चार पैर, इतने जूते कहाँ से लाएंगे, तो भी श्री कृष्ण ने भी जूते पहने से इनकार कर दिया। तो गोपियां सोच रही हैं कि श्री कृष्ण के कोमल चरण कमल हैं, इसलिए कमल से तुलना की जाती है, कमल पुष्प जो है बहुत कोमल होता है स्पर्श के लिए, तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं श्री कृष्ण के चरण कमल, और ये कोमल चरण कमल अब पत्थरों पे जाएंगे और कांटों के ऊपर चलेंगे। तो गोपियों का चिंतन ऐसे रहता था। आजकल शाम को हम गोपी गीत गा रहे हैं, गोपी गीत के दौरान हम ये सुन रहे हैं कि गोपियों की भावना क्या है। उसी प्रकार से माता यशोदा के चिंतन इसी पर ऐसे ही है। माता यशोदा की तन्मयता क्या है, वो सोच रही हैं कि श्री कृष्ण अब क्रीड़ा कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ में, और अब काफी देर हो गया और श्री कृष्ण ने भोजन नहीं लिया। अब भोजन नहीं लिया तो कमजोर हो जाएगा तो कल बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसे माता यशोदा का चिंतन है। दिन भर माता यशोदा ऐसे ही चिंतन करती हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से खिलाए कैसे, पिलाए कैसे, रोग से बचाए कैसे, बच्चे को सुरक्षित कैसे रखें। माता जी जरा तो कृष्ण को कैसे ठीक ठाक रखें, कृष्ण को कैसे पोषण ठीक से किया जाए, ये माता यशोदा का चिंतन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये है सही चिंतन, ये है वृंदावन का चिंतन। हाँ, ये कंस और शिशुपाल के चिंतन से कहीं श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि हमें अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ इस वृंदावन के तन्मयता से परिचित कराना चाहते हैं। कैमुत्य भाव से वो कहते हैं कि देखो, शिशुपाल और कंस की तन्मयता ऐसी थी तो ब्रजवासियों की तन्मयता कैसे हुई होगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नारद मुनि हमें वृंदावन की ओर ले आ रहे हैं कि आओ, यहाँ वृंदावन के निवासियों की तरह अपनी चेतना को बनाओ। तो हमें भी ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर चिंतन मनन करें। और ये कब कैसे संभव हो सकता है, जब हम श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे साधन भक्ति के अंगों का पालन हम अच्छी तरह से करें। हमारे सुबह का जप है, भागवत क्लास का श्रवण है, कीर्तन है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन है, इन सब चीजों को हमें अब दिन भर ऐसे कार्यों में अपने आप को मग्न रखना चाहिए, और जो समय बच जाता है उसमें खूब सेवा भी करनी चाहिए। सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, वो पुण्य या वो सुकृति प्राप्त होती है जिससे कि हम भगवान के कथाओं को सुनने के लिए रुचि जागृत कर सकें, वो सुकृति प्राप्त होती है जिससे कि हम भगवान के पवित्र नामों को अच्छी तरह से जप और कीर्तन कर सकें। तो ऐसे साधन भक्ति के अंगों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से धीरे धीरे ये तन्मयता हमारे अंदर भी श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा से उत्पन्न हो सकती है। ये हमारे जीवन का ध्येय है, न कि क्रोध से भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना है। हमारे जीवन में कोई ऐसे तथा कथित अशुभ चीज भी हो जाए, एक दुखद घटना भी घट जाए, फिर भी भगवान के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। नहीं, ये भगवान की कृपा समझ के उनके शरण को हमें स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन नहीं पाए हम प्रश्न, माइक है। सामने आके जरा बोलिएगा।
शिशुपाल भगवान को बहुत सारे अपशब्द कहा
जी,
तो इसमें भगवान क्यों उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा, कर इसे उन्होंने वैभव से दूर है, सभी भाव से दूर है।
अच्छा, प्रश्न ये है कि यदि भगवान वैर भाव आदि से दूर हैं, मुक्त हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं, इन द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो जब शिशुपाल ने उनके प्रति अपशब्द कहे तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके वध क्यों किया शिशुपाल का? उनको सहन करना चाहिए था, यही आप कह रहे हैं। हाँ, वैसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता शिशुपाल कौन है। एक ऐसे व्यक्ति ने कोई निंदा की भगवान की, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी भगवान तो अपने स्थान में स्थित हैं, परंतु भगवान ने शिशुपाल का वध कृपा करने के लिए किया, शिशुपाल के ऊपर कृपा की। ऐसा वध करके शिशुपाल को अपने वैर भावना से शुद्ध कर दिया, और क्योंकि शिशुपाल का चिंतन मनन सतत हुआ करता था कृष्ण के ऊपर, उस चिंतन मनन के द्वारा अब शिशुपाल की मुक्ति हो गई। तो भगवान ने अपने शिशुपाल जैसे शत्रुओं की भी मुक्ति कर दी, दंतवक्र शिशुपाल कंस आदि सबको मुक्त कर दिया उन्होंने। ये भगवान की कृपा होती है कि भगवान अपने शत्रुओं के प्रति भी, मतलब भगवान शत्रुत्व की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग उनको शत्रु मानते हैं उनका भी भला करते हैं। साधारण दुनिया के संबंधों में देखा जाता है कि हमारे प्रति यदि कोई गलत बातें कहता है तो हम कुछ चाहते हैं कम से कम मन में कि उसकी बुराई हो जाए, चाहते हैं भले हम करें ना करें, मन में तो कम से कम चाहते हैं सूक्ष्म या स्थूल भाव से कि उसका कुछ बुरा हो। शुद्ध भक्त तो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो भगवान कैसे चाहेंगे? तो भगवान जो भी कुछ करते हैं वो भक्तों के या शत्रुओं के हर व्यक्ति की भलाई के लिए करते हैं। तो उन्होंने शिशुपाल का उद्धार करके उनको मुक्त करा दिया। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, शिशुपाल दंतवक्र, उसके पहले रावण कुंभकर्ण, उसके पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, काफी समय इनके बीच में रह गया। तो उस बीच वो कहाँ थे? जहाँ भगवान ने उनको ठीक ठाक रखा। ये समय की कल्पना तो हमारे दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान के काल क्रम में उनके लिए एक क्षण हमारे लिए अनेक युग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे लिए जो एक साल है वो देवलोक में 24 घंटे हैं। तो इसलिए हम हमारे दृष्टिकोण से समय का नापतोल करते हैं, इसलिए हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अंतिम प्रश्न। हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप सामने आके थोड़ा सा स्पष्ट कही। अच्छा, जो वैकुंठ जाते हैं वो लौट के नहीं आते हैं, तो जय विजय कैसे आ गए? ये विशेष योजना है भगवान की। भगवान खास करके उनके दूतों को भेजते हैं, उनके शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कोई उनकी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए। जैसे प्रवचन में तो हम कह रहे थे कि भगवान जब वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, जो कि आध्यात्मिक जगत में नहीं होता क्योंकि वहां तो कोई असुर होते नहीं है, इसलिए भगवान अपने कभी कभी अपने ही पार्षदों को भेजते हैं। वो पार्षद यहाँ आके भगवान के शत्रु की भूमिका निभाते हैं और भगवान से युद्ध करके उनको वीर रस का आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, ये विशेष कारण से भेजा गया, ये पतन नहीं है, ये विशेष भगवान के योजना से वो भेजे गए हैं। और भगवान तो इस श्लोक में कह ही रहे हैं कि शीघ्र ही तुम मेरे पास फिर से आओगे, जब तुम्हारा काम हो जाएगा, 3 जन्म हो जाएंगे तो फिर मेरे पास लौट के आ जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गोप प्रेमानंदे।